हरे कृष्ण। तो फिर से हम एकादशी के दिवस पर आलवारों की कथा करेंगे। पिछली बार आंडाल की कथा हुई थी, बहुत ही सुंदर कहानी थी आंडाल की। और आज हम दसवें आलवार तुंडरदिपोड़ी आलवार इनके बारे में चर्चा करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कलयुग के तीसरे और चौथे शतक में ये हुए। तुंडरदिपोड़ी आलवार का जन्म कलयुग के करीब करीब 290 साल में हुआ, समझ लीजिए कि करीब करीब 5000 वर्ष पूर्व। और वैसे कावेरी नदी के तट पर चोल राज के देश में तिरुमंदनगुड़ी नाम के शहर में, गांव में उनका जन्म हुआ, मार्गशीर्ष महीने में। और वो वनमाली वैजयंती माला के अंशावतार माने जाते हैं श्री वैष्णव संप्रदाय में। ये सारे आलवार बहुत विशेष हैं, उनका भगवान के लीलाओं में बहुत ही विशेष गहरा संबंध है। इनका नाम पहले तुंडरदिपोड़ी आलवार नहीं था, जन्म से इनका नाम था विप्र नारायण। विप्र मतलब ब्राह्मण, जो शास्त्रों को पढ़ता है उसको विप्र कहते हैं। और उनका जन्म ऐसे ही एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिसमें कि बहुत आध्यात्मिक और भक्ति के संस्कार थे। और विप्र नारायण के कुटुंब के सदस्य सब वहां के विष्णु मंदिर के सेवा में लगे हुए थे, पुष्प कैंकर्य सेवा। पुष्प कैंकर्य मतलब पुष्पों से भगवान की सेवा करना, जैसे कि पेरी आलवार किया करते थे, मालाकार किया करते थे, तुलसी को उगाना, तुलसी की माला करना, फूलों को उगाना, फिर फूलों की माला करना और भगवान को अर्पण करना। जैसा कि हम पहले कई बार कह चुके हैं, ऐसे पुष्प कैंकर्य जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भक्ति मार्ग में। तो यही भक्तिमय वातावरण में उनका जन्म हुआ, ऐसे ही संस्कार उनको मिले और वो भी इसी सेवा में लगे अपने परिवार के सदस्यों के साथ। बचपन में उनके सारे संस्कार हुए जो कि एक साधारण ब्राह्मण कुल में होते हैं, जैसे चूड़ा मुंडन और नामकरण, उपनयन इत्यादि सारे संस्कार हुए। साथ साथ में वेदों का पाठ किया, पुराणों का पाठ, उपनिषदों का पाठ, जो वैसे पहले ब्राह्मण के घरों में हुआ करता था, वो सारे उपदेश शिक्षाएं उनको प्राप्त हुई। और ऐसे भक्तिमय वातावरण में होने के नाते उनके अंदर भी स्वाभाविक तौर से भक्ति की वृद्धि होती गई। बहुत ही सुंदर ढंग से वो अपने फूलों का उद्यान संभालते थे और उसमें उन्होंने तरह तरह के फूलों के वृक्ष बनाए थे, फूलों के अन्य पौधे, तरह तरह के फलों के पेड़ इत्यादि। और हमेशा उनका जो उद्यान होता था, बगीचा होता था, बड़े बड़े ध्यान से उसको संभालते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। इसका मतलब है कि जो भी हम सेवा करते हैं इसी प्रकार से करना चाहिए। हम भगवान के लिए बर्तन मांजते हैं तो बिल्कुल चकाचक साफ साफ बर्तन होने चाहिए भगवान के। भगवान की रसोई कर रहे हैं तो रसोई बिल्कुल साफ होना चाहिए। जो भी सेवा भगवान के लिए करते हैं पूरे ध्यान से, भक्ति भाव से करना चाहिए। और बचपन से ही भगवान की भक्ति में रुचि होने के नाते जैसे जैसे वो बड़े हुए, उस समय भी संसार में उनका कोई झुकाव नहीं रहा। उन्होंने ये तय कर लिया कि मुझे ब्रह्मचारी ही रहना है, मुझे विवाह नहीं करना है, मेरा सारा जीवन केवल भगवान की सेवा के लिए बिताना है। और इस प्रकार से समय बीतता गया और धीरे धीरे से जैसे समय बीता, एक दिन अपनी यात्रा में आते आते कई कई बार वो तीर्थ स्थानों में जाते थे तो श्रीरंगम में आए। श्रीरंगम में उन्होंने श्री रंगनाथ जी का दर्शन किया और बहुत प्रभावित हुए रंगनाथ के सौंदर्य से। अंग्रेजी में कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, मतलब सौंदर्य देखने वाले के दृष्टि में है। जैसे माँ को अपना छोटा बच्चा हमेशा सुंदर लगता है। प्रभुपाद जी एक बार कहा करते थे कि एक माँ थी जिसको एक अंधा बच्चा जन्म हुआ, लेकिन फिर भी माँ का स्नेह था तो उसने बच्चे को पद्मलोचन नाम रख दिया। तो देखने वाले की दृष्टि में है। यहां संसार में भी हम देखते हैं, किसी को कोई व्यक्ति बहुत सुंदर लगता है, किसी को नहीं लगता है। तो जैसे आध्यात्मिक भौतिक स्तर में यह होता है, आध्यात्मिक के लिए भी है। जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि है वही भगवान के अर्चक विग्रह के सौंदर्य को सही तरह से समझ पाएंगे, इसको इसके रस को प्राप्त कर पाएंगे। कई लोग जब जाएंगे तो केवल भगवान का दर्शन करके आएंगे, शायद भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करने के लिए भी समय नहीं, इधर उधर उधर देखेंगे। कई बार हम देखते हैं यहां भी जब लोग आते हैं कई बार मंदिर में, भगवान की ओर देखने के बजाय हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, लेकिन दृष्टि इधर उधर होती है, भगवान को बहुत कम देखते हैं। ठीक है, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, उतना तो कर रहे हैं, भक्ति भाव से आ रहे हैं, परंतु प्रशिक्षित नहीं है। तो भगवान के सामने आके कैसे प्रेम से भगवान का उसके सुंदर रूप का दर्शन करना चाहिए, वो उनको नहीं मालूम है। और श्रीरंगम में एक पुजारी थे, जिस एक कथा आपको शायद पहले भी सुनाई होगी हमने, वो शिकायत कर रहे थे हमारे के इस्कॉन के भक्त से कि देखो रंगनाथ जी इतने सुंदर हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि यहां पर आते हैं, लंबी लाइन में खड़े, कतार में खड़े होते हैं दर्शन लेने के लिए, और जब भगवान के सामने आते हैं, श्री विग्रह के सामने आते हैं, तो आंख बंद करके ध्यान में खड़े रहते हैं। क्योंकि भारत में लोगों के लिए ये एक धारणा है कि आध्यात्मिक जीवन मतलब आंखें बंद करके ध्यान करना। कई बार हम देखते हैं जब हम रेलवे गाड़ी में, रेलवे ट्रेन में कभी जाते हैं तो लोग हमारे पोशाक को देखते हैं, माला कर रहे बैठे हैं, तो उनको भी दिखाना होता है कि मैं भी कुछ भक्ति करता हूं, मैं भी आध्यात्मिक वृत्ति का आदमी हूं, तो अचानक मेरे सामने ऐसे जाके बैठ जाते हैं, तो ये बिल्कुल ध्यान में मग्न हो गए हैं, किसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं पता नहीं। तो लोगों की ये सब अलग अलग धारणाएं हैं। तो वो पुजारी बोल रहे थे इतना भगवान का सुंदर रूप है और यहां आने तक आंखें इधर उधर फाड़ फाड़ के देख रहे थे सब कुछ, लेकिन जब आंखें फाड़ फाड़ के खोल के देखना चाहिए उस समय बंद कर रहे हैं। जब आंखें खुली होनी चाहिए, खुली आंखों से भगवान के सुंदर रूप के अमृत का पान आंखों से करना चाहिए, उस समय वो सोचते हैं कि किसी एक निराकार के या किसी भी ऊपर ध्यान करना चाहिए। भगवान के सुंदर रूप को चखने के लिए, जानने के लिए भी दृष्टि चाहिए। जैसे कि एक पीलिया या जॉन्डिस के मरीज को गन्ने के रस का स्वाद नहीं आता है, हालांकि गन्ने का रस बहुत मीठा होता है, परंतु उसके अंदर ये बीमारी होने की वजह से उसे गन्ने का रस भी कड़वा लगता है। लेकिन इसके लिए उपाय एक ही है, उसे गन्ने का रस पीते रहना चाहिए, धीरे धीरे से उसकी पीलिया की बीमारी ठीक होती जाएगी। और जैसे जैसे बीमारी ठीक होती जाएगी वैसे वैसे उसको इस गन्ने के रस का स्वाद आता रहेगा, फिर धीरे धीरे वो महसूस करेगा हाँ ये तो मीठा है, मीठा है। और इस प्रकार से जब पूरी तरह से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तब पूरी तरह से उसको उस गन्ने के रस का मिठास का अनुभव हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम सबके अंदर आध्यात्मिक दृष्टि से एक रोग हो गया है, ये भोग का रोग। जब तक ये भोग का रोग हमारे चित्त में समाया हुआ है, छा गया है हमारे चित्त के अंदर, तब तक हमें केवल ये संसार का सौंदर्य दिखता है, तथा कथित सौंदर्य। संसार में कोई सौंदर्य नहीं है वास्तव में देखा जाए तो, परंतु भोग वृत्ति के दृष्टि से, भोग दृष्टि से देखने की वजह से हमें लगता है कि ये बहुत सुंदर है, और वास्तव में जो सुंदर है जो सर्व आकर्षक हैं, कृष्ण, कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, उनके सौंदर्य को हम समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर श्री कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, सर्व आकर्षक मतलब सबको आकर्षण करने वाले, और इतने आकर्षक हैं कि कोई भी उस आकर्षण से बच नहीं सकता है। जन्माष्टमी के पहले कृष्ण लीला में चर्चा हो रही थी कृष्ण के आकर्षण के बारे में, कैसे वो सबको आकर्षित करते हैं। तो कृष्ण इतने आकर्षक होते हुए भी ये कैसे संभव है कि कई लोग आकर्षित नहीं होते? केवल कृष्ण की ही यह शक्ति है कि लोगों को उनके आकर्षण के प्रभाव से दूर रखें, और वो है कृष्ण की माया शक्ति। भगवान की माया शक्ति उन लोगों के लिए है जिनके हृदय में भोग की वृत्ति है, लेकिन जिनके हृदय में भक्ति भावना है वो तुरंत आके यहां पे भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देखेंगे, बहुत प्रभावित हो जाएंगे। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के सामने आते थे जगन्नाथपुरी में मंदिर के अंदर, तो उनको श्याम सुंदर दिखाई पड़ते थे बांसुरी बजाते हुए। साधारण आदमी को केवल एक लकड़ी की पुतली दिखाई पड़ती है। हम लोग जब एक बार गए थे जगन्नाथपुरी में दर्शन कर रहे थे, बड़े हम लोग खड़े थे दर्शन करते करते, और वहां एक पंडा थे, वो बोलने लगे, अरे क्या आप लोग एक लकड़ी के पुतली के लिए इतना सब आप जा रहे हो, दक्षिणा दे दो और आगे चले जाओ। पंडा बोल रहे हैं। तो फिर अन्य आदमियों की बात तो दूर है, उनको उनका दक्षिणा चाहिए था, कुछ श्रद्धा नहीं था, ये कोई पुतली नहीं है। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया, प्रतिमा नहि तुम ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन, कि आप प्रतिमा नहीं है, स्टैच्यू नहीं है, आप साक्षात व्रजेंद्र नंदन है। तो जगन्नाथ भगवान जो है वो विरह के रूप है। जब द्वारका में भगवान कृष्ण होते हैं और कभी कभी उनको वृंदावन की याद आती है तो भाव विभोर हो जाते हैं, जैसे वृंदावन के निवासी भाव विरह के भाव में उनके तरह तरह के विकार प्रकट हो जाते हैं शरीर में, ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के निवासियों के प्रेम के बारे में सोचते हैं उनके अंदर भी ऐसे विकार होने लगते हैं। और फिर इसी प्रकार से जगन्नाथ जी का रूप है, ये लीला अब नहीं सुनाएंगे। तो जगन्नाथ भगवान वास्तव में श्री कृष्ण है जो कि वृंदावन के भाव में है, विरह में है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने उनका दर्शन किया तो उन्होंने श्याम सुंदर को देखा। तो अपने दृष्टि में सब कुछ निर्भर है। जब विप्र नारायण गए रंगनाथ जी के सामने, इतने सुंदर लगे उनको रंगनाथ जी, शायद अन्यों को लगा होगा या नहीं लगा होगा, लेकिन उनको तो सत्य पता चल गया कि इतने सुंदर हैं ये, तो उन्होंने ठान लिया कि हमको यहीं पर रहना है। तो श्रीरंगम में ही उन्होंने अपना निवास स्थान बना दिया और वहां अपने पुष्प कैंकर्य चालू रखा, सेवा करते रहे। थोड़ी जमीन लेकर बहुत ही सुंदर उन्होंने बगीचा बनाया भगवान के लिए, तरह तरह के फूलों के वृक्ष थे, फलों के वृक्ष थे, फलों के अन्य पौधे थे फूलों के लिए, और ऐसे रोज दिन भर उसमें व्यस्त रहा करते थे, सेवा में मग्न होते थे पूरी तरह से। यही सच्चा आनंद है। इस तरह से भगवान की सेवा में मग्न होने से ज्यादा कोई आनंद जीवन में नहीं है। जो रस इसमें मिलता है, जो शांति, जो संतुष्टि मिलती है, और कहीं नहीं है। तो इस प्रकार से जब विप्र नारायण सेवा करते जा रहे थे, हर रोज उन्होंने बनाए हुए फूल माला के रूप में तुलसी माला भी भगवान को अर्पण किए जाते थे रंगनाथ भगवान को। ऐसे कई दिन बीत गए। एक दिन हुआ ये भगवान की अचिंत्य योजना से एक अद्भुत घटना या एक अद्भुत लीला की तैयारी हुई। वहां पर हुआ ये कि एक वेश्या थी जिसका नाम था देव देवी, वो बहुत सुंदर थी और ऐसा कोई पुरुष नहीं था जो उसके प्रति आकर्षित नहीं होता था। वो चोल देश के राजा की बड़ी प्रिय थी। वास्तव में कहा जाता है कि वो स्वर्गलोक की एक अप्सरा जो अभी यहां उतर के आई थी, देवांगना नाम की। तो वो एक पास वाले गांव में रहा करती थी, कभी कभी चोलाराज के पास आया करती थी। तो एक बार ये देव देवी अपने सहेलियों के साथ, अपने बहन के साथ वहां से वापस जा रही थी कि रास्ते में विप्र नारायण का बगीचा आया। काफी गर्मी थी और थक भी गई थी वो। उन्होंने सोचा, चलो यहाँ अच्छा बगीचा है, यहाँ जाके थोड़े छांव में बैठें, विश्राम करें। तो यहां पर बैठकर फिर वो अच्छी तरह से देख रहे थे, अपने सहेलियों से कह रही थी, देखो कितना सुंदर है ये, इतना सुंदर बगीचा मैंने नहीं देखा है, शायद ये तो इंद्र और कुबेर के उद्यानों से ज्यादा सुंदर है। तो उसकी सहेली ने कहा, क्यों नहीं, जब यहां के फूल इत्यादि रंगनाथ जी के सर पर जाते हैं तो रंगनाथ जी इनको स्वीकार करते हैं और इनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, तो अवश्य सुंदर होना ही है। तो ऐसे वो बहुत ही रमणीय स्थान में बैठकर उस सुंदर स्थान का आनंद ले रही थी। और इधर उधर देखते देखते उनकी दृष्टि विप्र नारायण के ऊपर पहुंची, जो कि वहां पर अपने फूलों की सेवा में बिल्कुल मग्न थे। उनको पता ही नहीं चला कि यहां पर ये सुंदर महिलाएं आई हैं और वहां पर बैठे हैं उनके बगीचे में। और अगर पता भी था कि ये लोग आए हैं, वो ध्यान भी नहीं दे रहे थे, परवाह भी नहीं कर रहे थे, पूरी तरह से 100% अपनी सेवा में मग्न थे। उन्होंने अपना सर उठाया भी नहीं, अपनी दृष्टि एक बार भी उधर नहीं लगाया। इसी तरह से हमें भी हमारी सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवत सेवा करना है तो एकाग्र चित्त से करना है। एकाग्र चित्त से सेवा करने से सच्चे भक्ति का फल मिलता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एक यह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो कृष्ण भक्त होते हैं, जो परिपक्व हो जाते हैं, तो उनका चित्त जो है एकाग्र हो जाता है, भगवान के ऊपर पूरी तरह से 100% केंद्रित हो जाता है। लेकिन जो कृष्ण भक्त नहीं होते हैं, उनकी बुद्धि जो है बिखर जाती है इधर उधर, बहु शाखा ही अनंताश्च, अनेक शाखा हो जाते हैं, अनेक दिशाओं में उनकी बुद्धि फैलती है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भी एक वर्णन आता है, जो अवधूत महाराज यदु को सुनाते कि मेरे कितने सारे गुरु हैं, 24-25 गुरु हैं, उनमें से एक वो तीर बनाने वाला आदमी है जो कि लोहार था और सैनिकों के लिए तीर बनाता था। तो तीर बनाते बनाते उसको धार लगा रहा था, वो इतना मग्न था अपने काम में कि राजा वहां से गुजर रहा था। और आप जानते हैं कि राजा जब सड़क से चलते हुए जाते हैं तो उनका बैंड बाजा चलता है, संगीत वाद्य बजाते हुए सब लोग जा रहे थे, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था। लेकिन इस लोहार को बिल्कुल पता ही नहीं चला कि राजा जा रहा है, कौन है, क्या है, बिल्कुल अपने तीर में वो मग्न थे। तो इसी प्रकार हमारी भगवत सेवा में हमें भी आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो देव देवी के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ, ये उत्सुकता जागृत हुई कि अरे आज तक ऐसा कोई पुरुष मैंने नहीं देखा जो कि मेरे सौंदर्य से प्रभावित नहीं हुआ। तो उसने उस अपनी बहन से, अपनी सहेली से पूछा कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये आदमी पागल है या तो इसके अंदर पुरुषत्व नहीं है, नहीं तो ये ऐसे कैसा है कि मैं जब यहां बैठी हूं, हम सब यहां बैठे हैं, एक बार भी आंखें उठाकर हमारी ओर देखा नहीं है इस व्यक्ति ने। तो उसकी सहेली ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो पागल भी नहीं है और वो सही पुरुष भी है, परंतु अब उसके हृदय में भगवान श्री रंगनाथ के लिए इतना प्रेम उमड़ रहा है, इतनी भक्ति है उसके हृदय में कि उसको और किसी भी चीज के बारे में चिंता नहीं है, वो इन चीजों से पूरी तरह से दूर हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है इस संसार के सौंदर्य से, क्योंकि उसने रंगनाथ जी का सौंदर्य समझ लिया है तो संसार का सौंदर्य से उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर देव देवी ने पूछा, तो क्या अगर मैं जाके प्रयत्न करूंगी तो मेरे सौंदर्य से भी वो प्रभावित नहीं होगा? तो सहेली ने कहा कि अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो मैं मानूंगी कि वास्तव में तुम सबसे आकर्षक हो, और अगर तुम सफल हो गई तुम्हारे काम में तो मैं 6 महीनों के लिए तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। और देव देवी ने कहा कि ठीक है, अगर मैं जीत गई, अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी 6 महीने के लिए। तो देखिए, भक्तों को विचलित करने के लिए इतने सारे लोग योजनाएं बनाते हैं, हा? देखिए कैसे योजना प्लानिंग चल रहा है। ऐसे कोई नई बात नहीं, इतिहास में ऐसे होते ही रहता है। जब हरिदास ठाकुर भी आए थे, वैसे वहां के ईर्ष्यालु आदमी थे रामचंद्र खान, वहां के जमींदार थे। जब उन्होंने देखा कि हरिदास ठाकुर के पीछे इतने लोग पड़े हुए हैं, इतनी प्रशंसा लोग उनके कर रहे हैं, आके उनको दंडवत डाल रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, तो रामचंद्र खान जो कि स्वभाव से बड़ा ईर्ष्यालु था, उसने सोचा कि इस व्यक्ति को मुझे बदनाम करना चाहिए। और बदनाम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो उसने एक वेश्या को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, तुम यहां जाओ और अपना काम करो और उसको बदनाम करो। और फिर वो गई, लेकिन आप वो कथा तो जानते हैं। हरिदास ठाकुर ने उसे कहा कि मैं थोड़ा व्यस्त हूं, थोड़ी देर बैठो। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते 3 रात ऐसे लगातार निकल गए। कहा अभी मेरे माला हुए नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। और 3 रात समाप्त होने तक वो वेश्या जो है वो भी भक्त बन गई थी, केवल शुद्ध भक्त के नाम कृष्ण नाम का उच्चारण सुन के। और हरिदास ठाकुर ने कहा, जब उस वेश्या ने क्षमा याचना की कि मैं जानता था कि तुम कौन हो, तुम क्यों आई हो, परंतु केवल तुम्हें भक्त बनाना था मुझे, इसलिए मैं ही आ रहा, नहीं तो 3 दिन पहले ही यहां से निकल गया होता मैं। फिर उस वेश्या ने अपने पुराना जो काम है वो त्याग दिया, सर मुंडवा लिया, सफेद वस्त्र पहने, अपना धन सब भक्तों को बांट दिया और उसी कुटिया में रहने लगे और तुलसी की सेवा और हरे कृष्ण महामंत्र का जप निरंतर करते रहे। और हरिदास ठाकुर अपने आगे जगह में चले गए। ऐसे कितने उदाहरण हम देखते हैं इतिहास में। और विशेष करके जो ऋषि मुनि भी तपस्या करने जाते हैं तो देवलोक से भी इंद्र इत्यादि चिंतित हो जाते हैं, कामदेव को भेजते हैं, अप्सराओं को भेजते हैं उनकी तपस्या भंग करने के लिए। तो ये ईर्ष्या की भावना देखिए कितनी शक्तिशाली है। लोगों के मन में कैसी दुष्ट बुद्धि है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके पथ में भी कुछ ना कुछ अड़चन लाना, लेकिन जो खराब काम चल रहा है वो चलते रहने दो, कोई बात नहीं है, कैसी वृत्ति है। इसलिए माताओं को बहुत हमेशा सावधान रहना चाहिए कि उनका बर्ताव भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि अन्य पुरुष आकर्षित न हो, उत्तेजित न हो और अपने पथ से अलग भ्रष्ट न हो जाएं। और पुरुषों की चाहिए कि वो भी माताओं को, महिलाओं को माता जी के दृष्टि से देखें। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि हमारी संस्था में हर एक पुरुष को महिलाओं को माता जी कह के पुकारना चाहिए। जब हम माता जी कहते हैं तो माता का स्वरूप से देखते हैं हम, माता के प्रति केवल हमारा सम्मान, हमारी सम्मान की दृष्टि होती है। तो खैर वो चली आई और बाकी सब महिलाएं चले गए और देव देवी आके खड़े हो गईं विप्र नारायण के सामने। लेकिन विप्र नारायण फिर भी अपने काम में व्यस्त थे और पास में जाके वहां पर तुरंत दंडवत प्रणाम किया उनको और जोर से आवाज में रोने लगी। तो इस बार विप्र नारायण को देखना ही पड़ा, उसने देखा और पूछा कि तुम कौन हो बेटी। विप्र नारायण के बहुत लंबे बाल थे, दाढ़ी भी लंबी थी, काले काले बाल और उन्होंने दूध के समान सफेद वस्त्र पहने थे, गले में कंठी माला, वैष्णव तिलक धारण किए हुए थे, वैष्णव मुद्राएं धारण किए हुए थे। और इस महिला को देखकर पूछा कि बेटी तुमको क्या चाहिए, तुम कौन हो। तो देव देवी कहने लगी, वो नाटक कर रही थी, कि मैं एक बहुत पतित स्त्री हूं और मेरी मां जो है वो भी बहुत दुष्ट है। केवल पैसे के लालच से मेरी मां ने मुझे इस वेश्या के काम में लगा दिया है और मैं अपनी मां को त्यागना चाहती हूं और मैं मेरे पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहती हूं, मैं अच्छे मार्ग में आ जाना चाहती हूं, तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरी यही प्रार्थना आपसे है, मेरा उद्धार कीजिए, मेरे लिए और कोई उपाय नहीं है जीवन में। और जब आप रंगनाथ के मंदिर में जाएंगे कृपया मुझे अनुमति दीजिए, ये सेवा की संधि दीजिए, आपकी अनुपस्थिति में मैं यहां इस उद्यान का देखभाल करूंगी, यहां सेवा करूंगी। बेचारे विप्र नारायण स्वभाव से बहुत सरल, बहुत भोले और उन्होंने कुछ सोचा नहीं। उन्होंने देखा कि ये एक आई है, एक सेवक मिल गया हमको, भगवान रंगनाथ की सेवा और अच्छी हो सकती है। उनको स्वप्न में भी नहीं उन्होंने सोचा कि ये महिला के मन में क्या चल रहा है, कि वो क्यों आई है यहां पर। सरलता की वजह से उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ करो। और फिर क्योंकि वो बहुत कृपालु थे सारे प्राणियों के प्रति, जो भी उनका थोड़ा बहुत सीधा साधा भोजन होता था, प्रसाद होता था, जो कि वो वहां अपने घर में अपने घर के स्थित भगवान को अर्पण करते थे, वो भी इस महिला को देव देवी को दिलाते थे। ऐसे कई महीने बीत गए, 6 महीने, सारे 6 महीने देव देवी ने बड़े लगन से सेवा किया। जैसे तुंड जैसे विप्र नारायण चाहते थे वैसे सेवा करती गई बगीचे के अंदर। और विप्र नारायण भी बड़े प्रसन्न हुए। एक बार हुआ ये कि बरसात का मौसम आ गया और देव देवी काम कर सेवा कर रही थी बगीचे में, तो उस समय बारिश की वजह से वो पूरी तरह से भीग गई, फिर भी अपनी सेवा नहीं छोड़ा। तो विप्र नारायण उस समय उनकी छोटी सी कुटिया में थे, उनको दया आई, उन्होंने बोला कि आओ अंदर आ जाओ। और जब अंदर चले आए तो विप्र नारायण अच्छी तरह से उनको बिठाया। विप्र नारायण के मन में कोई बुरा विचार नहीं था, उनका मन तो शुद्ध ही था, परंतु देव देवी अभी सोचने लगी कि 6 महीने बीत गए और यह सबसे अच्छा अवसर है। तो इस प्रकार से धीरे 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 से देव देवी ने विप्र नारायण के मन को प्रभावित करने का प्रयत्न किया और आखिर सफल हो गई। उस समय विप्र नारायण बेचारे, उनको कभी ऐसे चीजों का अनुभव नहीं था, वो इतने सरल थे, भोले थे, और ऐसे भोलेपन की वजह से इस महिला की सेवा को उन्होंने स्वीकार किया, सोचते हुए कि ये भी कृष्ण भक्ति करना चाहती है, स्वीकार किया। और अब ये परिस्थिति हो गई कि उनका पतन हो गया। पूरी तरह से जब पतन हो गया तो उस समय देव देवी ने सोचा कि अब मैं जीत गई, अब मैं सफल हो गई मेरे उद्देश्य में। उधर विप्र नारायण के लिए एक नई दुनिया खुल गई, क्योंकि बचपन से ही भक्ति के संस्कार में पाले पोसे गए थे और बड़े होकर भी वो केवल इसी काम में लगे हुए थे, इस दूसरे माया की दुनिया का उनका कोई अनुभव था ही नहीं, ये क्या है, कैसे चलता है दुनिया। और फिर तुरंत ये महिला जो है देव देवी विप्र नारायण को छोड़कर चली गई, उसका सारा धन ले लिया, उसको उनको निर्धन करके वो चली गई अपने घर में। लेकिन अब तक इस घटना के बाद अब विप्र नारायण उनके गुलाम जैसे बन गए थे। तो जैसे ही देव देवी अपने घर में चली गई और विप्र नारायण हताश हो गए, हैरान हो गए कि अब क्या होगा, वो भागते भागते गए देव देवी के पीछे। लेकिन देव देवी ने बहुत अपमान किया विप्र नारायण का, अपने घर के अंदर नहीं छोड़ा, दरवाजा बंद कर दिया। और बेचारे विप्र नारायण देव देवी के घर के बाहर दरवाजे के बाहर दिन भर बैठा करते थे, कितने अपमान सहन किए उन्होंने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। अब पूरी तरह से कामदेव के वश में आ गए थे, और जो व्यक्ति कामदेव के वश में आता है तो उनको बिल्कुल पता नहीं चलता है कि क्या होना है, क्या अपमान है, क्या सम्मान है, कुछ नहीं, तो वो अपनी ही दुनिया में थे। और इस प्रकार से वो जो बगीचा था, जो कि पहले केवल रंगनाथ की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब उसका रंग बदल गया, उसका स्वरूप बदल गया, अलग दृष्टि से इसको देखने लगे। और फिर दिन भर ऐसे बैठते बैठते काफी समय बीत गया। विप्र नारायण जो सेवा करते थे रंगनाथ के प्रति, वो धीरे धीरे बंद हो गया, उनका संध्या वंदन भी बंद हो गया, फूलों की माला करना बंद हो गया। और एक बार ऐसे हुआ कि शोभा यात्रा निकली भगवान श्री रंगनाथ की। अब जानते हैं कि हर एक मंदिर में जो बड़े मूर्ति होते हैं उनके अलावा छोटे मूर्ति होते हैं, जिनको उत्सव मूर्ति कहते हैं या विजय मूर्ति कहते हैं, जो कि उत्सव के समय या शोभा यात्रा के समय जो पालकी में उनको विराज कर उनको बाहर ले जाते हैं। तो जब भगवान लक्ष्मी देवी के साथ में अपनी शोभा यात्रा में निकले थे, तो उस सड़क से गुजरते हुए जा रहे थे जहां की देव देवी का घर था, और वहां बाहर विप्र नारायण बड़े उदास होकर ऐसे बैठे थे। तो लक्ष्मी देवी ने भगवान से पूछा, ये और तो कोई नहीं देख सकता था, शोभा यात्रा में चल रहे हैं भगवान, लेकिन केवल दोनों को मालूम, लक्ष्मी नारायण को मालूम और किसी को नहीं मालूम पड़ा। तो उन्होंने पूछा कि यार ये कौन है, और ये ऐसे कैसे बैठे हुए हैं उदास होकर यहां पर, इनकी क्या समस्या है? तो भगवान ने लक्ष्मी देवी से कहा कि क्या तुम पहचानती नहीं हो, ये तो हमारे पुराने सेवक हैं विप्र नारायण, अभी ये बेचारे देव देवी के जाल में फंस गए हैं, अब देखो ये इनकी दशा है। कि ये तो आपके सेवक हैं, भले ही थोड़ा बहुत पाप में फंस गए हो, भले ही उनका पतन हो गया हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपको तो कृपा करनी चाहिए इनके ऊपर, इनको फिर से आपकी सेवा में लेना चाहिए। तो भगवान ने उत्तर दिया, हाँ अभी करूंगा, तुरंत करूंगा, देखते रहो तो मैं क्या करता हूं। तो फिर ऐसे हुआ कि थोड़ी देर बाद देव देवी के दरवाजे पर खटकने की आवाज आई, कोई खटखटा रहा था दरवाजा। अब देव देवी ने दरवाजा बंद करके ही रखा था क्योंकि बार बार विप्र नारायण वहां पर खटखटाए करते थे, लेकिन इस बार देव देवी ने देखा और सुना कि ये जो खटखटाने की आवाज है ये थोड़े अलग है आवाज, कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि इतने बल से विप्र नारायण नहीं कर सकता है। अब अपने धोखे की वजह से वो इतना कमजोर हो गया, जो उसको धोखा हो गया उसके साथ, वो कमजोर हो गया, इसलिए वो शक्ति नहीं है उसके अंदर, लेकिन ये जो खटखटाने की आवाज ये अलग है। तो उसने दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खोल के देखा तो एक आदमी वहां पर खड़े थे। उन्होंने कहा, मेरा नाम रंगा है और मुझे विप्र नारायण ने आपके पास भेजा है, और ये जो सोने की थाली है उन्होंने आपके लिए दिया है। सोना नाम सुनकर जो है देव देवी के कान ठीक हो गए, बहुत खुश हो गई, चेहरा हसमुख हो गया, तुरंत ले लिया। कहाँ है विप्र नारायण? यही है, बाहर है, मैं बुलाता हूं उनको। हाँ हाँ जरूर बुलाइए। निर्धन तो कर दिया था देव देवी ने विप्र नारायण को, लेकिन अब सुना कि सोने की थाली है तो और शायद भी सोना हो सकता है। तो इस बार फिर से विप्र नारायण के पास आने की इच्छा हुई देव देवी की। तो रंगा गए और बाहर विप्र नारायण बैठे थे, कहा, देव देवी बुला रही है, जाओ जाओ जल्दी जाओ। तो विप्र नारायण उठे, जल्दी से उठे और अंदर चले गए, और फिर वहां से रंगा चले गए उस घर के बाहर। अगले दिन सुबह को हुआ ये कि जब रंगनाथ के मंदिर में पुजारियों ने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां एक सोने की थाली गायब हो गई है। तो सब जगह हाहाकार मच गया, सोने की थाली भगवान के अंदर से कौन, किसने गायब किया, किसने गायब किया, कहां गया? तो सब जगह छान मार रहे थे, राजा तक खबर पहुंच गई, चोला राजा तक। चोला राजा ने जितने भी वहां के सेवक थे जो पूजा करने वाले थे और उनके सहायक भी जो थे वहां के, सबको गिरफ्तार कर लिया और सबको दंड देने वाले थे। बहुत तमाशा हो गया वहां पर, हाहाकार मच गया। उस समय देव देवी की एक दासी थी जो पानी लाने के लिए वहां से जा रही थी मटके को लेकर, और उसने देखा कि यहां तो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, आके देखा, रे क्या बात है, क्या हुआ, यानी ऐसे ऐसे घटना हुई है। अच्छा सोने की थाली, अरे सोने की थाली तो वो विप्र नारायण नाम के ब्राह्मण ने मेरे मालकिन के पास रखा है, वो उसके तकिए के नीचे है ये। अच्छा तो फिर जो मंदिर के मैनेजर थे वो जल्दी से गए थोड़े लोगों को साथ में लेकर, विप्र नारायण को पकड़ा, कहा ले जाओ उस देव देवी के घर में। तो विप्र नारायण को बेचारे कुछ नहीं मालूम, ठीक है देव देवी के घर में चलो। तो ले गए और वहां पे उनके घर में अंदर जाकर तकिए के नीचे देखा तो वही सोने की थाली वहां पर। तो दोनों को गिरफ्तार किया उन्होंने, राजा के सामने पेश किया गया उनको। तो राजा चोल राजा ने बहुत गंभीरता से कड़क स्वर में देव देवी से कहा, तुमको ये औका, तुम्हारी ये औका, तुमने भगवान की सोने की थाली चोरी कर ली। तो देव देवी बहुत डर गई, बोली, नहीं हुजूर, हमने बिल्कुल नहीं किया, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, ये आदमी विप्र नारायण है, उसने एक आदमी को भेजा और उस आदमी ने आके मुझे दिया, मैंने कुछ नहीं किया है। तो राजा ने विप्र नारायण की ओर देखा, बड़े गंभीर आवाज से बोलने लगा, तो विप्र नारायण तुम्हारा क्या जवाब है? तो विप्र नारायण कहने लगा, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने ये सोने की थाली आज तक नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, देखा ही नहीं मैंने। फिर देव देवी कह रहे, नहीं नहीं इसी ने भेजा, मैंने नहीं भेजा। इस तरह से तर्क और वाद चलता रहा, राजा को पता ही नहीं चला कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो उसने सोचा, ठीक है मुझे समय चाहिए सोचने के लिए कि क्या करना चाहिए, फिर भी जब तक कि मैं निर्णय दूंगा तब तक ये विप्र नारायण को जेल में डालना चाहिए बंद करना चाहिए और देव देवी को दंड देना चाहिए, कोई शुल्क देना चाहिए उसको, फाइन। तो इस ये निर्णय लेकर राजा फिर रात को सो गए। फिर उस समय लक्ष्मी देवी ने फिर से भगवान रंगनाथ से कहा कि आपने कहा कि आप कुछ करने वाले हैं, लेकिन ये क्या हो गया? अभी आपको कुछ अपने भक्त के लिए करना चाहिए, देखो बेचारे कितने पीड़ित हैं, जेल में हैं। आज सुबह भी हम रामदास, भद्राचलम के रामदास के बारे में चर्चा कर रहे थे ना, उनको भी भगवान ने जेल में भेज दिया। कभी कभी ऐसे भगवान अपने भक्तों को जेल भी भेजते हैं। भक्त जो होते हैं भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो खैर, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम देखते रहो मैं क्या करता हूं। फिर उस रात को जब राजा नींद में थे, भगवान रंगनाथ उनके सपने में आए और कहने लगे, हे राजन, देखो तुम विप्र नारायण को जानते नहीं हो, वो मेरे सेवक है, मेरे बहुत प्रिय सेवक है, और पिछले ये जन्म जो है ये अनेक जन्मों का एक श्रृंखला वो चलती रहती है। इस जन्म में इसने ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है, लेकिन पूर्व का कोई एक संस्कार है जिसकी वजह से ऐसे हुआ। अब मैं उसको अपनी तरह से शुद्धिकरण उसका करा रहा हूं, लेकिन इसको छोड़ दो आप, ये मासूम है, इसका निष्पाप है, इसकी कोई गलती नहीं, छोड़ दो इसको, और देव देवी को भी दंड नहीं देना। तो चोल राज उठे, नींद से जागे, आश्चर्यचकित हो गए, साथ साथ आनंद से भाव विभोर हो गए, तुरंत गए जेल में और उनको छुड़वा दिया विप्र नारायण को, और उनको दंडवत प्रणाम करके बहुत क्षमा याचना की कि हमारी बहुत गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है आपके प्रति, हम नहीं जानते थे, भगवान स्वयं मेरे सपने में आए और उन्होंने बताया, इसलिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए। और देव देवी को भी उन्होंने छुड़वा दिया, कोई दंड नहीं दिया। और इस प्रकार से भगवान के स्वप्न में आदेश जो था राजा के ऊपर कि इस विप्र नारायण को फिर से उसके पुष्प कैंकर्य में लगाओ, उसके बगीचे में फिर से स्थित करो, मैं इसकी सेवा स्वीकार करना चाहता हूं। तो फिर से विप्र नारायण अपनी सेवा में लग गए। भगवान की कृपा से विप्र नारायण के हृदय में वही पुरानी भक्ति, वो तीव्र कृष्ण भक्ति जागृत हो गई। और फिर जिस भाव में आकर अपने पतित अवस्था के बारे में जो उन्होंने सोचा, तो बहुत घृणा करने लगी कि अरे क्या हो गया था मुझे, क्या किया मैंने, क्या हो गया था, कैसे हुआ ये। और इस बार अभी पीछे कभी नहीं देखा उन्होंने, पूरे भक्ति भाव से आगे चले पूरी तरह से, और इतने शुद्ध होगा कि सब जगह उनकी भक्ति प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरा इतना पतन हो गया था, इसका प्रायश्चित कैसे होना है, इसको इस पाप से मुक्त कैसे हो सकता हूं। तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए एक ही उपाय है। उपाय वो है कि भक्तों के चरण धूलि को स्वीकार करना, भक्त को जो पद जल है उसको स्वीकार करना, यही एकमात्र उपाय मेरे लिए है। तो उन्होंने ऐसे किया, सारे वैष्णवों के चरण धूलि को उसका अभिषेक कराया। सारे शास्त्रों में भी ऐसे ही बताया जाता है, श्रीमद् भागवत में भी ऐसे कथा है, सारे शास्त्रों में, अन्य पुराणों में भी, भक्ति पथ में वैष्णवों की चरण धूलि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई शास्त्रों में ऐसे, जैसे ब्रह्मांड पुराण में और अन्य पुराणों में वर्णन आता है कि भक्तों के चरण धूलि को लेकर हमें अपने आप से अभिषेक कर लेना चाहिए, पूरे शरीर में, सर में लगाना चाहिए। लेकिन वास्तव में भक्तों के चरण धूलि को स्वीकार करने का मतलब है कि उनके सेवक बनकर उनके आज्ञा का पालन करना। केवल ऐसे ही चरण धूलि लेकर लगा दिया और फिर स्वतंत्र भावना से कुछ करना, वो ठीक नहीं है। और इसके बाद इस घटना के बाद उनका नाम हो गया भक्त अंघ्रि रेणु। संस्कृत भाषा में ये अंघ्रि मतलब चरण, रेणु मतलब धूल। तो जिन्होंने भक्तों के चरणों की धूलि स्वीकार की, भक्तांघ्रि रेणु, और तमिल भाषा में इसको तुंडरादि पोडी कहते हैं, करेक्ट, तुंडरादि पोडी। तो ये है जिन्होंने भक्तों के चरण धूलि को अपने सर पे या अपने जिन्होंने ग्रहण किया। इस प्रकार से उन्होंने अपने भक्ति भाव को व्यक्त किया और उन्होंने दो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। ग्रंथ मतलब कविताओं के, उनके श्लोकों के, उनके भक्ति भाव की रचनाएं हैं। एक का नाम है तिरुमालई, जिसका मतलब है कि बहुत ही दिव्य हार माला, जिसमें उन्होंने विश्लेषण किया शरीर और आत्मा इत्यादि, कि आत्मा कैसे है और आत्मा का स्वरूप क्या है इत्यादि। और दूसरा, दूसरी रचना जो उनकी है वो तिरुपल्ली येलुच्छी, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट, येलुच्छी, जिसका मतलब है भगवान का जागना। और इसमें उन्होंने इस बात के ऊपर पुष्टि ज्यादा ध्यान दिया है, ये बताया है कि कैसे वैष्णव को चाहिए कि वो भगवान के दासों का दास बने। देखिए वही बात, अब सब जगह सारे वैष्णव ग्रंथों में, वैष्णव शिक्षाओं में, वैष्णव उपदेशों में महान वैष्णवों की बात सुनेंगे, बार बार यही बात सुनने में आती है कि हमें केवल भक्तों के दासों का दास बनना चाहिए, दासानुदास, बॉसानुबॉस नहीं। संसार में तो बॉसानुबॉस चलता है, भक्ति में दासानुदास चलता है। वैसे देखा जाए भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह। वो कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो, आचार मतलब व्यवहार, दुराचार मतलब बुरा व्यवहार, सुदुराचारो मतलब अति बुरा व्यवहार। तो अगर मेरा भक्त, भगवान कृष्ण कहते हैं, सुदुराचारी भी हो जाता है, उसका पतन भी हो जाता है, भजते माम अनन्य भाग, लेकिन वो भजा भज रहा है, भजन कर रहा है मेरा, तो साधु एव समन्तव्य है, कि मैं उसको साधु ही मानता हूं, सम्यक व्यवसितो हि सह, क्योंकि वो मेरी भक्ति में स्थित है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति। तो भगवान कहते हैं कि शीघ्र ही ये व्यक्ति धर्मात्मा बन जाएगा और मेरी शाश्वत सेवा में पुनः स्थापित हो जाएगा, और इसलिए ही अर्जुन सब जगह जाके घोषणा करो कि मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होगा। अगर भी भक्त कभी भगवान के भक्ति से थोड़े समय के लिए दूर भी चले जाए, लेकिन ज्यादा समय के लिए दूर नहीं रह पाएगा। एक बार उसने भगवान की भक्ति के रस का स्वाद लिया है तो और संसार का रस उसको ज्यादा समय के लिए तृप्त नहीं कर पाएगा, आज नहीं तो कल वो भगवान के चरण कमलों में लौटकर अवश्य आएगा। लेकिन इसके लिए एक सावधानी की बात है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि अगर किसी भक्त का पतन हो जाता है, अगर भक्त दुराचारी हो जाता है, तो किस अवस्था में उसको साधु मानना चाहिए? जब उसका पतन अकस्मात हो जाता है, अपघाती तरह से हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति योजना बनाता है कि मैं पतित हो जाऊंगा, मैं कोई पाप करूंगा, और इसके बाद भी, मैं पतन होने के बाद भी भगवान कहते हैं मैं साधु हूं, लोगों को मुझे सम्मान करना चाहिए, ऐसे नहीं। वश के बाहर होकर अचानक अकस्मात ऐसे हो जाए और माया में हम फंस गए, अचानक हमारा पतन हो गया, तो फिर ये ठीक है। भगवान कहते हैं क्योंकि उसके हृदय में अभी तक मैं बसा हूं, मेरा अनन्य भाव से भजन कर रहा है, इसलिए साधु ही है, मैं उसको भक्त ही मानता हूं। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे प्लानिंग से अपने पाप करता है, योजना बनाकर जानबूझकर ऐसे फिर पाप करता है, वो वृत्ति सही नहीं है, फिर ऐसा व्यक्ति भक्त नहीं कहलाता, सच्चा भक्त नहीं है। अगर भक्त गलती कर भी देता है अपने बावजूद, निस्सहाय होकर उसका पतन हो जाता है माया के प्रभाव से, तो उसको बहुत पश्चाताप होता है। यह पश्चाताप भक्त की पहचान है। नारद मुनि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि भक्ति की एक पहचान यह है कि जब भक्त एक क्षण के लिए भी भगवान को भूल जाता है तो उसको बहुत पश्चाताप होता है। तो हमें भी यही भावना निर्माण करनी चाहिए भक्त, हमारे भक्ति जीवन में, कि हमारे से, हमसे भी कोई भूल चूक हो जाए, हमको पश्चाताप होना चाहिए। घर में आकर्षित होकर हमने घर में टीवी चालू है वो देख लिया, एक के बाद देखते रहे, दिन ब दिन टीवी के प्रोग्राम देखते रहे, हमें समझना चाहिए ठीक है ये अच्छा नहीं है हमारे भक्ति के लिए, उसके बाद पश्चाताप करके अगली बार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वही चीज अब करें फिर वही गलती बार 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 करते रहें, आज फिर अच्छी बात नहीं। फिर हमारे भक्ति में हम प्रगति कैसे करेंगे? भक्ति में प्रगति करना है तो हमको बहुत सिंसियर रहना है, और जब गलती हो भी जाए अकस्मात तो उसके बाद हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि वही गलती पुनः न हो जाए। तो ये एक तोंडर आदि पौड़ी की अलवार की कहानी है। ऐसे कितने सुंदर सुंदर कहानी भक्तों की भी है जैसे ऐसे ही हुआ। तो भगवान कितने कृपालु हैं कि अपने भक्त को कभी छोड़ते नहीं है। भक्त भी भगवान को कभी छोड़ के भी जाए लेकिन भगवान छोड़ते नहीं है, उसको खींचकर वापस ले आते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं, आप लोग की शिखा क्यों रखते हैं पीछे, सर मुंडवा कर शिखा है? शिखा इसलिए रखते हैं कि अगर कोई भक्त जो है भटक भी जाए तो भगवान शिखा को पकड़कर बुलाएंगे, ए कहाँ जा रहे हो मेरे पास, चले आओ मेरे चरणों में, चले आओ। तुम कहाँ जाओगे मेरे छोड़कर, यहाँ अमृत का पान कर रहे थे, वहां विष का पान करने के लिए जा रहे हो, चलो चलो यहाँ आओ, फिर से आओ। तो भगवान उनके भक्तों को ऐसे खींचकर फिर से लाते हैं। तो ऐसे रंगनाथ जी ने विप्र नारायण को वापस बुला दिया, ऐसे कठिनाई में उनको डाल दिया, कठिनाई में डालकर फिर उनको वापस बुलाया। तो कभी कभी भगवान का ये हमें वापस बुलाना थोड़ा कठिन लग सकता है हमको, इसलिए इसके लिए हमें भगवान को कष्ट नहीं देना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि अगर मेरा पतन हो गया, अगर हम पथ भ्रष्ट हो गए, भक्ति मार्ग में ढीले पड़ गए, भगवान तो अवश्य चिंतित होंगे। तो क्या भक्त के लिए अच्छी भावना है? भक्त की भक्ति का मतलब है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को चिंतित करना नहीं। और भगवान को कष्ट देना पड़ेगा हमें कि भगवान को कुछ योजना करनी होगी हमें वापस लाने के लिए। तो अच्छा भक्त जो होता है वो सोचता है भगवान को कभी हम कष्ट नहीं देंगे, हम ऐसे आचरण करेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे कि भगवान प्रसन्न होंगे, वैष्णव प्रसन्न होंगे। ये आदर्श भक्ति है। फिर भी इस कथा से हम सीख सकते हैं कि भगवान की कृपा कितनी अपार है, कैसे वो भक्त वत्सल है, कभी भी अपने भक्तों को वो त्यागते नहीं है। और आगे चल के तोंडरी पोड़ी अलवार बहुत प्रसिद्ध हुए, उनकी भक्ति और भी तीव्र 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 होती गई। 105 साल की उम्र तक वो रहे श्रीरंगम में, और फिर पुनः वैकुंठ धाम में लौट के चले गए। श्री तोंडरी पोड़ी अलवार की जय। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं ना। उन्होंने लिखे तिरुमालाई और तिरुपल्ली येलुच्ची, ये दो संक्षिप्त रूप में ही बताया कि उन्होंने ज्यादा करके पहले तिरुमालाई में ज्यादा आत्मा शरीर इसके बारे में ज्यादा बताया है, और दूसरे में ज्यादा करके उन्होंने यही सार बतलाया है कि कैसे भक्त को चाहिए कि वह वैष्णवों के दासों का दास बने। इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है। न्यूज़ हेडलाइंस देख सकते हैं कि नहीं? समस्या यह है कि एक बार न्यूज हेडलाइन देखना शुरू कर लिया फिर केवल हेडलाइन नहीं रह जाता, फिर बॉडी लाइन भी आ जाता है, फिर हम सब कुछ देखना शुरू करते हैं। 5 मिनट और देखेंगे, 5 मिनट और देखेंगे। और आजकल जैसे देव देवी ने किया ना, लोगों का मन कैसे बुरी दिशा में लाना है, ऐसे जो जो मनोरंजन की इंडस्ट्री में लोग हैं ना, उनका काम ही यही है, कैसे लोगों का मन और नीचे 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 खींच के आना, 3 गुणों में उनको ज्यादा नीचे खींचना, खास करके तमोगुण में रजोगुण में। आजकल सिनेमा के पोस्टर देखिए, सब जगह विज्ञापन देखिए, बुद्धि चलाते हैं, दिन भर सोचते रहते कैसे लोगों का पतन कराएं। वहां तो केवल एक देव देवी थी, यहां पर तो सारे समाज में सभी लोग यही सोच रहे हैं कैसे लोगों को इस वृत्ति में खींच के ले आए। तो टीवी तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक माध्यम है। क्या क्या नहीं चलता है आजकल टीवी, हम सुनते हैं, सुन के ही मन बिगड़ जाता है कि क्या आजकल क्या समाज की दशा हो गई है। और फिर आकर्षण हो जाता है, ठीक है देखेंगे, एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, और हम भी नहीं देखेंगे तो अन्य लोग आके देखेंगे, तो क्यों रखना ही क्यों है इस टीवी को, क्या है इस टीवी में। आजकल कलयुग में ये कलयुग को बढ़ाने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है टीवी, ये सबसे बड़ा चेला है कली का, कली चेला कलयुग को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। जो बर्बादी, जो पतन पिछले टीवी के आने के बाद से हुआ है 20, 25, 50 सालों में, वो पतन हजारों साल में नहीं हुआ। ये टीवी अकेले एक टीवी नहीं, सारे संस्कृतियों को बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजकल छोटे छोटे गांवों में भी हम देखते हैं कि लोग मुंह खोलकर ही बैठे हैं, सब विदेश के दृश्य देख रहे हैं, चमक धमक, जो शहरों के बड़े बड़े चमक धमक उनके कार्यक्रम, ये सीरियल्स, और उनको आकर्षण हो रहा है, हम भी खेती छोड़ेंगे, हम ये छोड़ के हम शहर में जाएंगे, हम भी उनकी तरह रहेंगे। कितना नुकसान हो रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा है इसकी वजह से। तो क्यों चाहिए हमें ये टीवी? जो आपको हेडलाइंस चाहिए थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए अखबार में, काफी है उतना। और हमको तो हर घंटे में न्यूज की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, थोड़ा कुछ जितना हमें आवश्यक है हमारे काम के लिए, थोड़ा बहुत जगत में रहते हैं तो थोड़ा कुछ मालूम होना चाहिए, तो जितना आवश्यक है उतना जान लें, उसके बाद उसके अलावा इस खबर के लिए कोई अंत नहीं है। जितने भी अखबार पढ़े, हर एक आदमी अपने अपने दिमाग चला के विश्लेषण करता है, ये इलेक्शन में ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, सब अपने अपने बुद्धि लगाकर विश्लेषण करते हैं। भक्तों को इसके लिए क्या आवश्यकता है? जो गंभीर है भक्ति मार्ग में, उनके माता पिता कौन थे? विप्र नारायण। माता पिता कोई ब्राह्मण कुल के थे, जिन ग्रंथों में हमने पढ़ा उनके माता पिता का नाम तो नहीं रखा था, लेकिन एक बहुत ही सुशिक्षित ब्राह्मण परिवार के थे चोलराज में। भक्त को क्या करना चाहिए जिससे कि उसका भक्ति में पतन न हो? इसके लिए एक उपाय है, हमें पूरी तरह से मग्न होना है हमारी सेवा में, हमारी साधना में, पूरी तरह से हम मग्न रहे, सावधान रहे और बुद्धिमान रहे कि कहां कहां से खतरे आ सकते हैं हमारे भक्ति के जीवन में, तो फिर हम अपने आप को पतन से बचा सकते हैं। तरह तरह के पतन हो सकते हैं, माला बंद करना यह भी एक प्रकार का पतन ही है। तो भक्त को चाहिए कि बहुत वो कभी भी लापरवाही नहीं करे, जो भक्ति के विविध प्रकार के नियम है, विधि निषेध हैं, उनका बड़े सख्ती से पालन करें। अगले दो अलवारों की कथा कौन बताएगा? जब महीने में हम 3 दिन के लिए आएंगे, कई बार हम एकादशी के दिन पर आएंगे, तो उन एकादशी के दिनों पर ये अलवार की कथा चल सकती है। उसके बाद में और भी ऐसे कई आचार्य हैं, जैसे श्रीधर स्वामी, बिल्वा मंगल ठाकुर और चंडीदास, विद्यापति, ऐसे महान आचार्यों की कथा भी हो सके तो सुनेंगे। और उसके बाद कई गौड़ी वैष्णव आचार्य हैं, उनके बारे में सुनेंगे आगे चल के धीरे धीरे से।